कि इतनी जिंदगी मैं और आप गुजार चुके हैं, इतनी जिंदगी गुजारने वाले हैं, कोई अच्छा अमल है जिसकी ख्वाहिश आपके दिल में हो और आपने ना किया हो? कोई ऐसा अच्छा अमल जिसकी ख्वाहिश आपके दिल में हो कि काश मैंने ये किया होता और ना किया हो? क्या आप वो काम माह मुबारक के रमजान में शुरू कर सकते हैं? यहां से आपका कंट्रोल बढ़ना शुरू होगा। मसलन फर्ज फरमाइए, आपके दिल में ख्वाहिश थी कि काश, मिसाल के तौर पर, दुआए अबू हमजा शुमाली सुकून से पढ़ते कभी, क्योंकि हम लोग शबों में पढ़ते हैं, शबों में लोग तेजी तेजी से पढ़ते हैं, मज़ा नहीं आता इस तरह से। आप मिसाल के तौर पर तय कर लीजिए कि माह मुबारक रमजान के अंदर मैं किसी एक आम रात में, जब तेजी ना हो, जल्दी ना हो, दुआए अबू हमजा को सुकून से पढ़ूं। ऐसी अच्छाइयां जिसको आपने सोचा हुआ है कि करें लेकिन अभी तक करने का मौका आपको नहीं मिला है किसी भी वजह से। और अच्छा ही है कि इस मामले में किसी आदत का इंतखाब करें, कोई ऐसी अच्छी आदत जो आप डालना चाहते थे, अब तक नहीं डली है, इस महीने को इस्तेमाल करके आप डाल लें। दो तीन अच्छी आदतें आपकी खिदमत में इबादतों से अर्ज कर देता हूं। मिसाल के तौर पर फर्ज फरमाए, नमाज गुफैला नहीं पढ़ते थे, चाहते हैं कि आदत पड़ जाए, इस महीने में डालना। अगर मुझसे कोई पूछे, इंसान की जिंदगी में आम इंसान मौजजा दिखा सकता है क्या, तो मैं कहूंगा दिखा सकता है अगर नमाज को फैला पाबंदी से पढ़। यहां तक बात जा सकती है, आम इंसान भी ये काम कर सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये अजीब मौला का तोहफा है हमारे पास, इंतहाई मुआसिर, इंतहाई मुस्तनद। यानी बाज़ इबादत ऐसी होती हैं जिनके इस्तेनाद पे हम शक करते हैं लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं इस उम्मीद पे कि इंशाअल्लाह खुदा पूरा करेगा। हमारे पास एक रिवायत है, वो रिवायत मुस्तनद है, और उस मुस्तनद रिवायत में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को मेरे बारे में ये खबर मिले कि मैंने कोई सवाब का वादा किया है और वो उस पर एतमाद करते हुए वो काम कर ले और मैंने ना किया हो, तब भी मैं कयामत के दिन वो सवाब दिलवाऊंगा। भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये रिवायत मुस्तनद है हमारे पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल। अलबत्ता इसमें अक्ल और मंतिक को बहरहाल बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। मसलन कोई ये कहे, मैंने सुना है फला अगर दुआ पढ़ो तो किसी को कत्ल भी कर दो तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, नहीं ऐसे ये नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी शरीयत तोड़ने का कोई हुक्म इरशाद नहीं फरमाएंगे, अक्ल और मंतिक हमारे पास साथ रहनी चाहिए। मसलन जो सही मिसाल हो सकती है, मसलन फर्ज फरमाए कोई ये सुने कि मैंने सुना है कि अगर कोई सूरह दहर को, सूरह इंसान को हर रोज सुबह पढ़े तो सवाब ये है, उसने कोई रिवायत पढ़ ली और बाद में कयामत के दिन पता चला कि रिवायत सही नहीं थी, उसने रिवायत पढ़ी, रिवायत पे अमल किया इस उम्मीद पर कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, कयामत के दिन पता चला कि नहीं ये सब ये बात सही नहीं थी, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अगर इसने मुझ पर एतमाद करते हुए काम किया है तो मैं उसको सवाब दिलवाऊंगा, ठीक है। लेकिन अक्ल और मंतिक, मैंने कहा अक्ल और मंतिक साथ रहनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करवाए, दीन खुदा को पामाल करने की कोई बात ना हो, ये सारी बातें। तो कुछ रिवायत ऐसी होती हैं जिसमें शक होता है कि सही है या गलत है, लेकिन हम उस रिवायत पर इन्हिसार करते हुए उस रिवायत को टाइटल देते हैं मम बलगा, जिसको जब लिखते हैं तो लिखते हैं मन बलगा, लेकिन जाहिर जब अरबी में पढ़ेंगे तो मम बलगा कहेंगे। इस रिवायत का टाइटल है मम बलगा, यानी जिस तक कोई बात पहुंचे कि मैंने ये बात कही है और वो अमल करे तो मैं सवाब दिलाऊंगा। तो अगर रिवायत में शक होता है लेकिन मम बलगा की रिवायत को साथ लगाते हुए हम उस पर अमल कर लेते हैं कि अल्लाह के रसूल ने वादा किया, नमाज को फैला में शक नहीं है, मुस्तनद है, ये कोई शक की नमाज नहीं है, ये यकीन के साथ अहले बैत की नमाज है और इसके ऊपर इसरार है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का। अब क्यों महरूम रहे इस बात से? और अब ये दूसरा मामला बचकाना बात की, भाई देर भी कितनी लगनी है, 5 मिनट, इससे ज्यादा थोड़ी लगने, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, तो क्यों आप अपने आप को महरूम करें? अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपने कजा नहीं करनी है, यानी मिसाल के तौर पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरे कि जब आपने ना पढ़ी हो। हाँ ठीक है, बाद अवकात होता है इंसान मगरिब इशा थोड़ी देर से पढ़ रहा है, थोड़ी देर से भी पढ़ रहा है तब भी मगरिब इशा के दरमियान वो फैला जरूर पढ़ ले, या कभी ऐसा होता है आप किसी जमात के अंदर थे, मगरिब हुई فوراً جماعت عشاء کی شروع ہو گئی, اب آپ غفیلہ نہیں پڑھ سکے تو آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں. کسی بھی طرح سے کریں, آپ نے غفیلہ پڑھنی ضرور ہے. تو یہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا وقت ہے. اگر یہ عادت آپ کی نہیں پڑی تھی, آپ اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھائیے اور یہ عادت اپنے اندر ایجاد فرما لیجئے. یا مثلا آپ نے سوچا تھا کہ آپ ہر روز صبح کو مولا کی وہ زیارت پڑھیں گے جس کو ہم دعائے عہد تعبیر کرتے ہیں, اب تک خدا نہ کرے نصیب نہیں ہوا تھا, اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا لیجئے, اس میں اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں اسے شروع کروں. یا اسی طرح بہت ساری عادتیں ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں, زیارت عاشورہ کی عادت کرنا چاہے کوئی, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو یہ ماہ مبارک رمضان دوسرے پوائنٹ میں کنٹرول کے اعتبار سے آپ کو اس طرح سے فائدہ دے سکتا ہے کہ آپ اپنا کنٹرول بڑھائیں کھانے پینے سے, اپنا کنٹرول امپلیمنٹ کریں اچھے کاموں کو شروع کرنے کے لیے. اگر آپ ان دو میں اپنا کنٹرول امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا کنٹرول اور زیادہ بہتر ہو جائے گا, آپ کی معنویات بڑھیں گی. کنٹرول کو امپلیمنٹ کرنے میں تیسری جگہ جو بہت فائدہ دے سکتی ہے,